जिल्द नंबर 18 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफ़ीर। ये किताब नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ़ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफ़ीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। आप अब हज़रत बाबा फरीद गंज शफर के हालात ज़िंदगी सुन रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कसम खातून की एक करामत का जिक्र किया है, जिससे आपकी रूहानी अजमतों का अंदाज़ा होता है। एक रात कसम खातून तहज्जुद की नमाज में मशगूल थीं। इस वक्त शेख जमालुद्दीन सुलेमान का इंतकाल हो चुका था। चोर ने घर में दाखिल होते वक्त यही सोचा था कि यहाँ एक बेवा औरत और चार मासूम बच्चे मुकीम हैं। किसी महाफिज मर्द के मौजूद न होने से उसका काम आसानी के साथ तकमील पा जाएगा। वो इस यकीन और इत्माद के साथ अंदर दाखिल हुआ कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। चोर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसकी नज़र कसम खातून पर पड़ी। बाबा फरीद की मादर गिरामी इस कमरे के दरवाजे पर नमाज में मशगूल थीं, जहां उनके चारों बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। चोर ने देखा कि कसम खातून की आंखें बंद थीं, मगर होंठ हरकत कर रहे थे। चोर कुछ देर तक उस इंतजार में खड़ा रहा कि औरत दरवाजे से हटे तो कमरे में दाखिल होकर अपने मकसद की तकमील कर सके, मगर उसे क्या मालूम था कि ये एक शब-ए-बेदार खातून है, जो सारी रात अपने रब की बारगाह में सजदा रेज रहती है। बिलाखिर चोर ने इरादा कर लिया कि अगर औरत मज़ाहिम हुई तो जबर व तशद्दुद के जरिए से रास्ते से हटाकर अंदर दाखिल हो जाएगा। ये सोचकर उसने एक बार फिर औरत की जानिब देखा। कसम खातून इसी तरह आंखें बंद किए अपने खालिक के तस्वूर में खोई हुई थी। चोर आगे बढ़ा, मगर अभी उसने चंद कदम का फासला भी तय नहीं किया होगा कि वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया। ये एक नाकाबिले यकीन हादसा था। चोर बहुत देर तक घर की दीवारों से सर टकराता रहा, मगर उसे वापसी का रास्ता ना मिल सका। फरार की तमाम राहें बंद पाकर उसे अंदाजा हो गया था कि यह कहरे आसमानी है, जिसने आंखों की रोशनी जाहिल करके इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इस एहसास के साथ ही चोर ने चीखना शुरू कर दिया। मैं अपने अकीदे के एतबार से एक बुत परस्त हूँ और चोरी मेरा पेशा है। मैं इस घर में भी चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, मगर इससे पहले कि मैं सामानों असबाब चुरा कर फरार हो जाता, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। मेरे नज़दीक ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं। मेरा दिल कहता है कि इस मकान की चार दीवारी में कोई ऐसी बुजुर्ग हस्ती मौजूद है जिसकी दहशत ने मुझे अंधा कर दिया है। मैं इस बुजुर्ग हस्ती से दर्दमंदाना इल्तिजा करता हूँ कि वो मेरा गुनाह माफ़ कर दे। ये कहकर वो हिंदू चोर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। शायद वो अपनी इल्तिजा का जवाब सुनना चाहता था। कसम खातून हज़ब मामूल इस दखराक की हालत में थी, मगर जब एक चोर की आवाज़ें मुसलसल गूंजने लगीं तो उन्होंने आंखें खोल दी। मकान के सहन में एक तवील आमद इंसान ठोकरे खा रहा था। इसके लड़खड़ा कर चलने से साफ अंदाजा होता था कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। कसम खातून कुछ देर तक इस मजबूत और तवाना शख्स की बेकसी और मजबूरी का जायजा लेती रही, जिसे इस मकान में दाखिल होने से पहले अपनी जारियत और जिस्मानी ताकत पर बहुत नाज था। अचानक अजनबी की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। सुनने वाला यकीनन सुन रहा होगा, उसे उसके खुदा का वास्ता कि वो मेरी हालत ज़ार पर खामोश ना रहे। मैं इकरार करता हूँ कि चोरी और डकैती मेरा मुस्तकिल पेशा है, लेकिन अगर मुझे मेरी आंखों की गुमशुदा रोशनी मिल गई तो मैं हमेशा के लिए दिल आज़ारी के इस कारोबार को ख़त्म कर दूंगा। हज़रत बाबा फरीद की वाज़ह मोहतरमा फिर भी खामोश रहीं। इस सुकूत मुसलसल से वो मुनकर और सरकश इंसान मजीद दहशत ज़दा हो गया। फिर इसने बराह रास्त खातून खाना को पुकारा। मैं इन काबिल एहतराम खातून से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे गुनाह को माफ़ कर दें। बेशक मैंने इन्हें तन्हा समझकर चोरी का इरादा किया था कि एक कमज़ोर औरत और उसके मासूम बच्चे मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी बिनाई बहाल हो गई तो मैं अपने आबो अजदाद के मजहब को तर्क कर दूंगा और पत्थर के तमाम बुतों को तोड़ कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाऊँगा। एक लुटेरी की गरिया उजारी सुनकर कसम खातून ने अपना वजीफा नीम शबी छोड़ दिया और दुआ के लिए हाथ उठा दी। दुनिया समझती है कि मैं बेयारों मददगार हूँ, मगर तू जिसका मुहाफिज हो उसे कौन लावारिस कह सकता है। ताईदे गैबी पर कसम खातून की आंखें पीक गई थी। तेरी रहमत जिस घर की निगरबानी करती हो उसे रहजनों से क्या खतरा। अगर सारा समाना भी कज़ाक बनकर इस चार दीवारी पर टूट पड़े तो मेरा और मेरे बच्चों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। बेशक तू ही मेरा कफील है और तू ही मेरा वकील। मैं तेरी बंदगी पर नाजा हूँ कि तूने मुझ नातवां औरत का बदला इस मर्द से ले लिया जो बज़ाहिर कवि भी था और सितमगर भी। करसम खातून के लहजे की रिक्कत में दम बदम इजाफा होता जा रहा था। इसके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे, होठों में लर्जिश थी, मगर अचानक दुआ का अंदाज बदल गया था। तूने मुझे सरोसामा की हिफाजत की और एक जालिम इंसान के फितना और शर से महफूज रखा, लेकिन अब मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तूने जिसकी बिनाई सल की है उसको ये आंखों को दोबारा रोशन कर दे। वो भी तेरा ही बंदा है जो कुछ देर के लिए सीधे रास्ते से भटक गया था, अब वो तेरे कहर व जलाल का मुजाहरा देख रहा है। अगर तूने भी उसकी दस्तगीरी ना की तो वो कहाँ जाएगा? तेरे सिवा इसकी कोई पनाहगाह नहीं, कोई राह नहीं। मैंने अपना जुर्म माफ कर दिया, अब तू भी इसके गुनाहों से चश्म पोशी फरमा। तू इस पर कादिर है कि तमाम उम्र आंखों की रोशनी से महरूम रहकर कूचे गुमराही में भटकता रहे, और तू इस पर भी कादिर है कि वो आंखों के साथ इसके दिल की स्याही भी दूर हो जाए। फिर यकायक इस बुत परस्त कज़ाक ने महसूस किया कि आंखों के सामने से अंधेरे की बुलंद दीवार हट गई, उसकी बिनाई बहाल हो चुकी थी। वो लरजते कदमों से इस तख्त की तरफ बढ़ा जहाँ कसम खातून महवे इबादत थी। मैं अपने इस अमल पर इस कदर शर्मसार हूँ कि ज़ाहिर निदामत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पत्थर के पुजारी की आवाज़ कांप रही थी। ए शख्स, जिसने तेरी बिनाई को जाहिल कर दिया था वही इस कायनात का खालिक है, और दोबारा जिसने तेरी आंखों की रोशनी बहाल की है वही ज़ात इबादत और परस्तिश के लायक है। इस कायनात में उसी का हुक्म जारी और सारी है। हम सब बेदस्तुपा हैं और मजबूर हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कसम खातून ने नहायत आजाना लहजे में कज़ाक को मुखातिब करते हुए फरमाया, मेरा तो बस इतना फ़र्ज है कि तुझसे तेरा हल दरियाफ्त करूँ। यकीनन तुझे किसी ज़रूरत ने परेशान किया होगा कि तू इस गैर अखलाकी फेल पर आमादा हो गया। मेरे यहाँ तेरी हैसियत एक मेहमान की सी है, अगर हो सके तो अपनी ज़रूरत बयान कर, शायद मैं तेरे किसी काम आ सकूँ। कसम खातून एक बुजुर्ग की बेटी थी, एक वली सिर्फ शौहर की बेवा थी, और इसके अलावा आप नस्ल सादात से भी ताल्लुक रखती थी। यही वजह थी कि आप एक लुटेरे के सामने भी रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का मुजाहरा कर रही थी, और लुटेरे की खुजालत का यह आलम था कि अगर इस वक्त ज़मीन शक हो जाती तो वो अपने गलीज और नापसंदीदा वजूद के साथ सीने खाक में समा जाता। खातून, बस मेरे लिए यही बहुत है कि आप मुझे माफ़ कर दें। चोर के होंठों पर एक आजाना इल्तिजा थी, जैसे वो किसी के सामने कासाए गदाई के लिए खड़ा हो। ऐ शख्स, तूने मुझे क्या जरर पहुंचाया है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ? कसम खातून ने जवाबन फरमाया, मेरा यही जुर्म क्या कम है कि मैंने आप जैसी पाकबाज औरत को आजार पहुंचाने का इरादा किया। पत्थर का पुजारी लहजा ब लहजा पिघलता जा रहा था। इनसे माफ़ी मांग के जिनके हुकूक तूने गजब किए हैं। कसम खातून के लहजे से जलाल और रूहानी का इजहार हो रहा था। उनसे माजरत तलब कर जो तेरी वजह से बर्बाद हो गए हैं, और उसकी बारगाह में दामन फैला जिसने तुझे तवानाई के साथ अकल बख्शी, मगर तू बेजान और हकीर चीज़ों की परस्तिश कर रहा है। वापस जा और अपने तारीख माजी पर गौर कर, रोशनी की आवाज़ सुन जो तुझे बरसों से पुकार रही है। ये कहकर करसम खातून ने मुंह फेर लिया और हिंदू लुटेरा इस तरह वापस जाने लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार गया हो। यह अजीब वाकया निस शब के सन्नाटे में पेश आया था। कस्बे के किसी फर्द को खबर भी नहीं थी कि हजरत जमालुद्दीन सुलेमान की बेवा के साथ क्या हादसा पेश आया था। बस एक खुदाए हाजिर व नाजिर ने इस चोर को दाखिल होते और फिर कसम खातून को माफ करते देखा था। इस लुटेरे के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना कोई गवाही। अंधेरे में एक साया उभरा और कुछ देर बाद तारीकी में इसका अक्स तक डूब गया। बज़ाहिर अब किसी जुर्म का निशान था और ना मुजरिम का वजूद, मगर कौन जाने किसके जहन में कैसा हशर बरपा था और दिल में इनकलाब की कैसी लहरें उठ रही थीं। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहल्ले के लोगों ने देखा एक दराज कामत अजनबी अपने बीवी बच्चों के साथ कसम खातून के दरवाजे पर खड़ा था। हजरत जमालुद्दीन सुलेमान की बेवा ने आने वालों से पूछा कि वो कौन लोग हैं और उनकी आमद का क्या मकसद है। कहने वाले ने कहा, आपने गुज़िश्ता रात के वाक़े को अभी फरामोश नहीं किया होगा। मैं वही बेराह रो इंसान हूँ जो कल रात आपके मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। आप क्यों आए हो? कसम खातून ने लुटेरे से दरियाफ्त किया, इस अबदी रोशनी की एक किरण हासिल करने के लिए जिसने बुत कदों में जलने वाले सदियों पुराने चिरागों को बुझाकर रख दिया है। बुत परस्त लुटेरा जार और कतार रो रहा था। अब मंदिरों में हर तरफ धुआं फैल गया है, हर तरफ घोर अंधेरा है।
मुझे कोई देवता कोई भगवान नजर नहीं आता। बस अब मुझे और मेरे अहले खाना को दौलत ईमान अता कर दीजिए कि हमारे दिल भी बुतों के वजूद से पाक हो जाएं। कहो खुदा एक है, कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। कसम खातून ने आने वालों को मुखातिब करके फरमाया, हजारों साल से हल्के बुता में जीस्त बसर करने वाले खानदान के कुछ अफराद पर यकायक खुदा ने अपनी रहमत की नजर की और वो इंसान हिदायत पा गया जो अपनी फितरत में पत्थर का बुजारी और आदत में संगदिल कज़ाक था। मोतबर तारीखों में यह वाकया वाज़ह तौर पर रकम किया गया है कि हिदायत पाने के बाद इस लुटेरे ने अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। फिर यूं हुआ कि इस जिस जफाकशी से वो डाके डाला करता था उसी सख्त कोशी के साथ उसने आदाब शरीयत पर अमल किया और मजहब इस्लाम की इस कदर खिदमत अंजाम दी कि उसका शुमार खुदा के बरगजीदा बंदों में होने लगा। फिर इसी अब्दुल्ला ने शेख अब्दुल्ला के नाम से शोहरत हासिल की, यहाँ तक के इंतकाल के बाद शेख अब्दुल्ला को हजरत बाबा फरीद के वालिद मोहतरम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान और बड़े भाई हजरत एजाजुद्दीन महमूद के पहलू में दफन किया गया। आज भी जब जायरीन खानदान फारूकी के दीगर बुजुर्गों के मजारात पर फाता खानी के लिए हाजिर होते हैं तो इन्हें एक और मजार का गुम्बद भी रोशन नजर आता है। लोग कतार दर कतार अपने सरों को झुकाए हुए इस मरकज की तरफ बढ़ते हैं, फिर उनके हाथ दुआ के लिए बुलंद हो जाते हैं। ये मरकज हजरत शेख अब्दुल्ला का है। जब तक हजरत शेख अब्दुल्ला का मजार जमीन पर मौजूद है, आने वाले इसी तरह आते रहेंगे और उन्हें खुदावंद ज़ुल जलाल की करिश्मा साजियों का अंदाजा होता रहेगा। जिसे चाहे उसको तू सरमद बना दे, जिसे चाहे उसको तू मंसूर कर दे। यही वो करसम खातून है जो अपने वक्त की बड़ी आबदा थी। इसी ही मोहतरम खातून की दुआओं से एक बुतपरस्त कज़ाक ने हिदायत पाई थी और मार्फत के इस अजीम व जलील घराने की तरबियत ने एक बदनाम लुटेरे को शेख के बुलंद दर्जे तक पहुँचाया था। और इन्हीं खातून के बतन से तीन फर्जंद हजरत फरीदुद्दीन मसूद, हजरत एजाजुद्दीन महमूद और हजरत नजीमुद्दीन मुतवक्किल पैदा हुए। आपकी एक साहबजादी हजरत हाजरा थी जिनके आगोश मोहब्बत में मशहूर बुजुर्ग हजरत अली अहमद साबिर कलीली ने आँख खोली थी। आम तारीखी किताबों में हजरत बाबा फरीद का साल पैदाइश 582 हिजरी दर्ज है, मगर जदीद तहकीक से साबित हो चुका है कि आप 569 हिजरी में पैदा हुए थे। अभी आपकी उम्र 5-6 साल की होगी कि मुशफ़िक़ को मेहरबान बाप का साया सर से उड़ गया। हजरत फरीदुद्दीन मसूद का दौर यतीमी हजरत फरीदुद्दीन मसूद का दौर यतीमी दीगर अहले खानदान की नज़र में आफात व मसाइब का ज़माना था, लेकिन आपकी वालदा करसम खातून अपने अल्लाह के फैसले पर राजी बरजा थीं। जब रिश्तेदार ख्वातीन ने गिरिया उजारी करते हुए करसम खातून से ये सवाल किया कि इन बच्चों का क्या होगा, तो हौसला मंद माँ ने पुरअज़्म लहजे में कहा, बेशक इन बच्चों के बाप इस वक्त दुनिया से रुख्सत हो गए, तब इन्हें ताकतवर हाथों और महफूज साहिबान की ज़रूरत थी। लेकिन इस ज़ाहरी महरूमी के बावजूद ना मैं खुद को लावारिस समझती हूँ और ना मेरे बच्चे बेसहारा हैं। मैं जिस अल्लाह की परस्तिश करती हूँ वो अव्वल व आखिर भी है, बातिन व जाहिर भी है और हय्यो कय्यूम भी। कसम खातून का जवाब सुनकर बैन करने वाले औरतें अपने अपने घरों को चली गईं और ये पाक सीरत और जाँबाज खातून इन चारों बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गईं जो बाप की मोहब्बत के साए से महरूम हो गए थे। हजरत बाबा फरीद को शकरगंज या गंजे शकर के नाम से भी याद किया जाता है। यह आपका लकब है, मगर इस तरह कि आपके इसमें गिरामी का एक हिस्सा बनकर रह गया है। बाज़ किताबों में शकरगंज की वजह तस्मिया इस तरह बयान की गई है कि जब पहली बार कसम खातून ने अपने बेटे को नमाज की तलकीन की तो फरमाया, फर्जन नमाज अदा किया करो, इससे अल्लाह राजी होता है और अपने इबादत गुजार बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजता है। हजरत फरीदुद्दीन मसूद इस वक्त बहुत कमसिन थे, इसलिए मादरे गिरामी से पूछने लगे, जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है? मादरी ग्रामी ने फरमाया, नमाजी बच्चों को पहले शक्कर मिलती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह इन्हें दूसरे इनामात से नवाजता है। हजरत फरीदुद्दीन मसूद वालदा मोहतरमा की बात सुनकर मुतमईन हो गए। फिर जब वो इधर उधर चले जाते तो करसम खातून खामोशी से मुसल्ले के नीचे बुढ़िया रख देती। हजरत बाबा फरीद नमाज अदा करते और शक्कर की सूरत में अपना इनाम पा लेते। ये सिलसिला कई माह तक जारी रहा। फिर एक रोज कसम खातून घरेलू मसरूफियात में अपना रोजाना का अमल भूल गई। दूसरे दिन याद आया तो आपने अपने फर्जंद को बुलाकर पूछा, फरीद क्या कल तुम्हें मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी? कसम खातून के लहजे से इस्तिराब नुमाया था। जी हाँ, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है, हजरत बाबा फरीद ने बसद एहतराम अर्ज किया। बेटे की बात सुनते ही कसम खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, तूने मुझे फरीद के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। अगर तेरा दस्ते गैब उसे शक्कर फराम ना करता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? मेरा फिर कसम खातून ने बाबा फरीद को गले से लगा लिया और नहायत मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मेरा बेटा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर है। तसव्वुफ की अक्सर किताबों में यही रिवायत दर्ज है कि जिस रोज कसम खातून ने बाबा फरीद को शकरगंज कहकर पुकारा उसी दिन से आपका ये लकब मशहूर हो गया। मगर बाद के तस्करा निगारों ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया है कि हजरत बाबा फरीद को शकरगंज का लकब आपकी वालदा मुहतरमा ने नहीं दिया था, बल्कि यह बाबा फरीद की जिंदगी का एक अहम तरीन वाकया है जिसकी तफसीलात आगे पेश की जाएंगी। हजरत बाबा फरीद ने इब्तदाई तालीम कोठवाल के मकतब में हासिल की। आपके उस्ताद गिरामी सैयद नज़ीर अहमद अपने वक्त के आलम व फाजिल इंसान थे। हजरत बाबा फरीद ने 11 साल की उम्र में कारी मोहम्मद की निगरानी में कुरान करीम हिफ्ज किया। इसके बाद वालदा मुहतरमा के साथ हज बैतुल्ला के लिए तशरीफ ले गए। इस सफर में दीगर रिश्तेदार भी आपके हमरा थे। हजरत बाबा फरीद ने मादरी ग्रामी से अर्ज किया, मेरी ख्वाहिश है कि उस्ताद मोहतरम भी इस सफर में हमारे शरीक हों। जवाबन कसम खातून खामोश रही। गालिबन उनकी मर्जी नहीं थी कि सैयद नज़ीर अहमद भी उनके हम सफर हों। सैयद नज़ीर अहमद माली एतबार से एक तंगदस्त इंसान थे, मगर उनके सब्र कनात का ये हाल था कि किसी रईस के सामने दस्ते तरफ दराज करना तो बड़ी बात है। आपकी आंखों में कभी अक्से सवाल तक नहीं उभरा। हजरत बाबा फरीद अपने उस्ताद गिरामी की इस मजबूरी से बाखबर थे, इसलिए जब वालदा मोहतरमा ने हज का इरादा किया तो आप खामोश ना रह सके। सैयद नज़ीर अहमद ने मुझ पर अपनी वो दौलत लुटाई है जो दुनिया में बड़े बड़े शहनशाहों को मैसर नहीं आती। मेरा दिल चाहता है कि उस्ताद गिरामी को तवाफ़ काबा की सआदत हासिल हो जाए। अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है कि हम सैयद साहब के खराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि हम अपने एहसानात अजीम के बारे गिरां को किसी हद तक कम कर सकेंगे। बेटे की शिद्दत जज्बात देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मसूद एहसान फरामोश नहीं है। जब तालिबान ने शौक का ये मुख्तसर सा काफिला दियार हिजाज की जानिब रवाना हुआ तो हजरत बाबा फरीद की खुशी नाकाबिले बयान थी। हज की सआदत हासिल करने के बाद हजरत बाबा फरीद को मजीद तालीम के लिए मुल्तान भेज दिया गया। आप बड़ी जान फिशानी से मौलाना मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते रहे। हजरत बाबा फरीद के शौक का यह हाल था कि लड़कपन के बावजूद दुनिया की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए थे। मस्जिद में आने जाने वाले एक ऐसे लड़के को देखा करते थे जो हर वक्त किताबों के औराक में गुम रहता था। इस तरह कई साल गुजर गए। 587 हिजरी में हजरत फरीदुद्दीन मसूद के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। एक रोज हजरत बाबा फरीद मस्जिद के एक गोशे में बैठे थे, किसी किताब का मुताला कर रहे थे। आपका मामूल था कि मुताले के वक्त गर्दो पेश से बेखबर हो जाते थे, मगर उस रोज बाबा फरीद के इन्हिमाक में फर्क आ गया। वो एक तेज खुशबू थी जिसने आपको चौंक जाने पर मजबूर किया। बाबा फरीद ने नजर उठाकर देखा, एक रोशन चेहरा बुजुर्ग वुजू खाने की तरफ जा रहे थे। बाबा फरीद इन्हें देखते ही रह गए। वो बुजुर्ग सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा अकबर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। हजरत कुतुब हजरत बहाउद्दीन ज़िकरिया की दावत पर मुल्तान तशरीफ लाए थे। बाबा फरीद का दिल मुताले से उचाट हो गया। बार बार किताब की तरफ मुतवज्जो होते मगर एक लफ्ज भी समझ में ना आता। आखिर आपने किताब बंद कर दी और हजरत कुतुब की तरफ देखने लगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वजू किया और नमाज में मशगूल हो गए। बाबा फरीद ने एक बार फिर अपना मुताला जारी रखना चाहा, मगर यकसुई हासिल ना कर सके। बार बार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखते और अपने आप से सवाल करते, ये कौन बुजुर्ग हैं और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? ऐसी रोशनी तो मैंने किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। अलगर्ज हजरत कुतुब ने नमाज अदा की और फिर मस्जिद के उस गोशे की तरफ तशरीफ लाए जो बाबा फरीद के मुताले के लिए मखसूस था। जैसे ही हजरत कुतुब नजदीक पहुंचे, नस्ल फारूकी का नौजवान वारिस आपके जलाल मार्फत से घबरा कर खड़ा हो गया। बैठे रहो फर्जन, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नहायत शफकत से फरमाया। अगरचे हजरत कुतुब के होठों पर एक मलकूती तबस्सुम था, लेकिन आपके जलाल रूहानी ने बाबा फरीद के जिस्म पर लर्जा तारीख कर दिया था और जबान गुंग होकर रह गई थी। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हजरत कुतुब ने एक बार फिर मुजुर्गाना मोहब्बत का मुजाहरा किया। नाफे का मुताला कर रहा हूँ। बाबा फरीद की जबान से बमुश्किल ये अल्फाज अदा हुए। वाजे रहे कि जिन दिनों हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुल्तान की मस्जिद में तशरीफ लाए थे, उस वक्त बाबा फरीद फिक्र हनीफी की मशहूर किताब नाफे का मुताला कर रहे थे। इंशाल्लाह ये किताब तुम्हें बहुत नफा पहुंचाएगी, हजरत कुतुब ने नौजवान तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हुए फरमाया। मेरा नफा तो हजरत की निगाह कीमिया असर में पोशीदा है, बाबा फरीद ने नहायत वारफ्तगी के आलम में अर्ज किया। हजरत कुतुब ने नौजवान तालिब इल्म की तरफ बहुत गौर से देखा। तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? बेशक मैं आपकी ज़ाती गिरामी से वाकिफ नहीं, मगर दिल कहता है कि आपके कदमों से उठने वाला गुबार ही मेरी मंजिल है। बाबा फरीद की अकीदत व वारफ्तगी में कुछ और इजाफा हो गया था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नौजवान तालिब इल्म के जज्बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। फिर आपने बाबा फरीद के कंधे पर हाथ रखते हुए फरमाया, मैं शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी का मेहमान हूँ और उन्हीं की खानकाह में ठहरा हुआ हूँ। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो तुम भी वहां आ जाना। इस करम नवाजी पर बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत कुतुब के हाथों को बोसा दिया और दूसरे हुक्म का इंतजार करने लगे। हजरत कुतुब ने बाबा फरीद को दुआओं से सरफराज किया और अपने चंद खिदमतकारों के साथ हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया की खानकाह की तरफ तशरीफ ले गए। बाबा फरीद पर एक एक लम्हा गिरा था। खुदा खुदा करके रात गुजरी और फिर फजर की नमाज पढ़ते ही हजरत कुतुब से मिलने के लिए रवाना हो गए। जब हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया की खानकाह में दाखिल हुए तो वहां मुश्ताकान दीद का एक हुजूम था। बाबा फरीद ने खिदमतगारों से पूछा तो मालूम हुआ कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा अकबर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ लाए हुए हैं और उन्हीं के दीदार के लिए अहले मुल्तान बेकरार और मुस्तरिब हैं। ये सुनकर हजरत बाबा फरीद पर बेखुदी की सी कैफियत तारी हो गई। शहनशाह मार्फत खुद एक गुलाम के पास तशरीफ लाए, ये कैसी खुशनसीबी है फरीद, आप खुद कलामी के अंदाज में बोल रहे थे। खिदमतगार बाबा फरीद के जज्ब की इस कैफियत को ना समझ सका और आगे बढ़ गया। आप बहुत देर तक इसी हालत में किसी सुतून की मानिंद खड़े रहे। फिर जब सश्तारी की रौ गुजर गई तो आपने खानकाह के खादिम से अर्ज किया, मैं भी हजरत कुतुब की कदमबोसी को हाजिर हुआ हूँ। शेख को इतनी फुर्सत कहाँ? खादिम ने बाबा फरीद को गौर से देखा और एक आम नौजवान समझकर नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में खड़े हो जाओ साहबजादे, शेख गुजरेंगे तो दीदार कर लेना। इस चेहरे की एक झलक देखने के लिए सारी जिंदगी खड़े रहकर गुजार सकता हूँ, मगर तुम एक बार शेख से अर्ज करके तो देखो, शायद वो इस गुलाम को शर्फे बारियाबी बख्श दें, बाबा फरीद ने दरख्वास्त की। खिदमतगार ने टालना चाहा, मगर बाबा फरीद एक ही इल्तिजा करते रहे। आखिर हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया का खादिम झुंझला गया। शेख से क्या अर्ज करूं, कौन आया है? बस इतना अर्ज कर देना कि तालिब इल्म फरीद हाजिर हुआ है। खादिम का ख्याल था कि इस बज़्मे मार्फत में एक तालिब इल्म का गुजर नहीं होगा, मगर जब उसने हजरत कुतुब के रूबरू डरते डरते बाबा फरीद का नाम लिया तो आपने बड़े बालहाना अंदाज में फरमाया, उसे जल्दी भेजो, हम उसी का तो इंतजार कर रहे थे। वापिस आकर खादिम ने बड़ी हैरत से नौजवान तालिब इल्म की तरफ देखा। जाओ शेख, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा फरीद लरजते कदमों से मजलिस इरफान में दाखिल हुए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया जैसे बुजुर्गों के जलाल और नूर का ये आलम था कि आपकी आंख नहीं उठती थी। बहुत देर तक सर झुकाए दुजानू बैठे रहे। हजरत कुतुब हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया से मुखातिब हुए, शेख ये फरीद है, मेरा फरीद। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया ने नौजवान तालिब इल्म की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा फरीद दोनों बुजुर्गों की गुफ्तगु सुन रहे थे, मगर आप में नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 8 दिन तक मुल्तान में मुकीम रहे। इस दौरान बाबा फरीद एक खिदमतगार की तरह حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ کی خانقاہ میں موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو حضرت قطب سے عرض کرنے لگے، یہ غلام شاہ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے، انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کی تالیف قلب کے لیے فرمایا۔ پھر جب حضرت قطب حضرت بہاؤدین ذکریہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی تین منزل گزر جانے کے بعد حضرت قطب نے ایک مقام پر ٹھہر کر فرید الدین مسعود سے فرمایا، بابا فرید اب تم واپس جاؤ اور کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کی تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ بابا فرید پیر و مرشد کا حکم سن کر اداس ہو گئے، آپ کو یہ منزل فراق گوارا نہیں تھی۔ حضرت قطب کی نگاہوں سے بابا فرید کی دلی کیفیت پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے فرمانے لگے، فراق و وصال کتاب زندگی کے دو باب ہیں، یہ جدائی بہت عارضی ہے، بندہ جب خدا کے راستے میں قدم رکھے تو سب سے پہلے اسے تسلیم و رضا کے مفہوم پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اب تم جاؤ کہ مرضی خدا یہی ہے۔ بابا فرید نمناک آنکھوں کے ساتھ واپس آ گئے اور حضرت قطب الدین مختیار کاکی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ملاقات سے دو تاریخی حقائق سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ آپ 18 سال کی عمر میں ہی سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ حضرت قطب نے بابا فرید کو ملتان میں بیعت فرمایا تھا، مگر بعض مستند کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملتان میں حضرت قطب نے زبانی طور پہ وعدہ کر لیا تھا اور باقاعدہ رسم بیعت کئی سال بعد دہلی میں ادا کی گئی تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملتان سے رخصت ہوتے وقت حضرت قطب نے حضرت فرید الدین مسعود کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، یہ معرفت کا ایک راز تھا جسے صرف حضرت قطب ہی سمجھتے تھے۔ آپ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ ملتان کے ایک مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان طالب علم آنے والے زمانے کا بڑا بزرگ ہے، اور اسی رعایت سے حضرت قطب نے آپ کو بابا فرید کے لقب سے یاد کیا اور پھر اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر دیا۔ حضرت قطب کے رخصت ہو جانے کے بعد بابا فرید ملتان سے کھٹوال پہنچے اور مادر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قسم خاتون نے تعجب سے پوچھا، مسعود تم وقت سے پہلے کیوں لوٹ آئے، کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی؟ جواب میں حضرت بابا فرید نے حضرت قطب الدین مختار کاکی سے ملاقات کا احوال سنایا اور پیر و مرشید کی ہدایت کا ذکر کیا۔ والدہ محترمہ بیٹی کی اس خوش بختی سے بہت مسرور ہوئیں اور فرمانے لگیں، مسعود مجھے اسی دن کا انتظار تھا، خداوند ذوالجلال نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا کی، تمہاری بلند اقبالی کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت قطب الدین مختار کاکی جیسے بزرگ خود تم تک پہنچے اور تمہیں دولت لازوال سے سرفراز کیا، اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ پیر و پرشد کی حکم کی تعمیل خوش دلی کے ساتھ کرو، یہاں تک کہ حضرت قطب تم سے راضی ہو جائیں۔ پھر بابا فرید مادر گرامی کی دعاؤں کے سائے میں ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بغداد پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا جو بخارا سے ہو کر گزرتا تھا، چنانچہ حضرت بابا فرید پہلے بخارا تشریف لے گئے اور حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اجل شیرازی اپنے دور کے مشہور بزرگ تھے، آتش عشق نے انہیں اس قدر جلایا تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، سلاطین وقت اور عمراء زمانہ سے ملاقات کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اگر کوئی اہل ثروت ادھر سے گزر بھی جاتا تو چیخنے لگتے، خدا کے لیے یہاں سے دور ہو جا کہ تیری وجہ سے میری روح پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ مگر جب حضرت بابا فرید کو دیکھا تو بے اختیار فرمایا، میرے محبوب کے تیری آمد اہل دل کے لیے سرمایہ سکون ہے۔ بابا فرید تقریباً ایک ماہ تک حضرت اجل شیرازی کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت شیخ کی خانقاہ میں بخشش و عطا کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی ضرورت مند شخص خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اگر آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ ہوتا تو خشک خرما ہی دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اے غنی تو خوب دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندے اجل کے پاس کچھ بھی نہیں، آنے والے سمجھتے ہیں کہ مجھے تیری ذات سے ایک نسبت خاص ہے۔ اے امیروں کے دستگیر، اے شہنشاہوں کے کفیل، لوگوں کی اس خوشگمانی کی آبرو رکھ، ان کے دریدہ دامنوں کو اپنے کرم سے سی دے اور ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے فضل سے بھر دے۔ حضرت اجل شیرازی اس دعا کے ساتھ جسے رخصت کر دیتے وہ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ اپنے قیام کے دوران ایک دن بابا فرید نے حضرت اجل شیرازی سے دریافت کیا، آپ کے نزدیک درویش کون ہے؟ کیسٹ نمبر 18 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب اب آپ کیسٹ نمبر 19 میں سماعت فرمائیے۔